और कोई गति नहीं हमारी। जो इस कलयुग के जो कलमश हैं उनका हनन करने वाले हैं, और जो काल रूपी जो सर्प है उसको त्रस्त करने वाले, जिनके वश में ये पूरा संसार है, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पर मेरी भक्ति अखंडिता स्वरूप से हो। आज के इस रामनवमी महोत्सव में हम सभी नासिक पंचवटी निवासियों का स्वागत करना चाहेंगे। बहुत ही बड़ा सौभाग्य है हमारा कि इस पुण्य भूमि में हम प्रभु श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव दिवस मना रहे हैं आज। वैसे तो भगवान श्री विष्णु के अनगिनत अवतार हैं, परंतु इन सारे अनगिनत अवतारों में से प्रमुख हैं दो अवतार, और वो हैं श्री रामचंद्र जी का और भगवान श्री कृष्ण का। भारत में ये जो दो अवतार हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और इन दोनों अवतारों में से प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो अवतार है वो बहुत मान्यता रखता है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने उदाहरण द्वारा जन साधारण को ऐसी शिक्षा दी है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो कार्य हैं उनका यदि कोई अनुकरण भी करे। ज्यादातर कहा जाता है कि जो महान व्यक्ति होते हैं उनके कार्यों का अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं। परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में कहा गया है कि यदि उनके कार्यों का कोई अनुकरण भी करे तो भी वो बहुत ही सुरक्षित रहेगा। केवल सुरक्षित ही नहीं रहेगा बल्कि वो शुद्ध होगा, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने उदाहरण से मनुष्य जीवन का क्या धर्म होना चाहिए, इस समाज में एक पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए, एक पति का क्या धर्म होना चाहिए, एक भाई का क्या धर्म होना चाहिए, एक राजा का क्या धर्म होना चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक एक इस धर्म का उदाहरण अपने जीवन में दर्शाकर हमें सिखाया है, और इसीलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी इनका जो व्यक्तित्व है ये समझना बहुत सरल है, अन्यथा भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व समझ पाना इतना सरल नहीं, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसलिए वो अभिज्ञ स्वराट होने के नाते उनके जो कार्य हैं उस स्तर पर हैं, और प्रभु श्री रामचंद्र जी वो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने अपने सारी लीलाएं एक मर्यादा में की, इसलिए प्रभु रामचंद्र जी की जो लीलाएं हैं वो जन साधारण बहुत आसानी से समझ पाते हैं और अपने जीवन में अपना भी सकते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ऊंचे स्तर पर है, उसे समझ पाना, इसलिए स्वयं वही भगवद गीता में कहे हैं बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि बहुत से जन्म जब किसी व्यक्ति के बीतते हैं, और कैसे बीतते हैं, ज्ञानवान, जो व्यक्ति बहुत ज्ञानवान हो और ऐसे ज्ञान को अर्जित कर कर जब बहुत जन्म उसके बीतते हैं तब जाकर कोई व्यक्ति वासुदेवम सर्वमिति पूर्ण प्रकार से भगवान श्री वासुदेव को समझ पाएगा। वो एक व्यक्ति बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण उनका सब कुछ टेढ़ा है, जैसे आप देखेंगे वो जो खड़े होते हैं उनके खड़े रहने का ढंग त्रिभंग स्वरूप, टेढ़ा तिरछा। तो उनके खड़े रहने से उनकी सारी लीलाएं सब तिरछी हैं। इसलिए एक भक्त ने बहुत सुंदर रूप से इनके विषय में कहा है कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, यदि मुझे अपने हृदय में किसी को बिठाना है तो वो केवल आप ही हैं। क्यों आप ही केवल बैठ सकते हैं मेरे हृदय में? क्योंकि मेरा हृदय बहुत टेढ़ा है और उस टेढ़े हृदय में केवल आपका ही जो अस्तित्व है, आपकी जो मुद्रा है, वही फिट हो सकती है। परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में कहा गया है कि उनका जो व्यक्तित्व है वो जन साधारण को बहुत ही सरलता से, आसानी से समझ में आ सकता है। तो आज सुबह हमने चर्चा की, महाराज दशरथ ने जो अश्वमेध यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, और उसका एकमात्र प्रयोजन था कि वो प्रभु श्री राम को अपने पुत्र रूप में चाहते थे। तो देखिए, इन ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान जब अवतीर्ण होते हैं, जो प्रामाणिक अवतार होते हैं, जब वो इस धरातल पर आते हैं तो उन्हें बुलाया जाता है। महाराज दशरथ, सारे ऋषि मुनि, सारे देवता, ये सब लगे हुए थे उस अश्वमेध यज्ञ को सफल बनाने के लिए। क्यों? ताकि भगवान श्री राम वो अवतीर्ण हो। आजकल तो तथाकथित कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान मान लेता है, और विशेष रूप से कलयुग में यह बहुत बड़ा लक्षण है कलयुग का, कि कोई ऐरा गैरा लट्टू ठहरा जिसे कहते हैं, वो खड़ा होकर कहेगा कि मैं भगवान हूं, मैं वो अवतार हूं जो आने वाला है। और यदि पूछो कि किसी कुत्ते ने भी बुलाया था तुम्हें? यहां पर जब प्रभु श्री राम इनके विषय में कहा गया है तो महाराज दशरथ, वशिष्ठ मुनि, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवता, ब्रह्मा जी, ये सब याचना कर रहे थे। और इनको यदि पूछा जाए कि किसने बुलाया आपको, तो कोई उनके गली का कोई प्राणी भी नहीं होगा जिसने बुलाया होगा उस व्यक्ति को। तो यहां पर महाराज दशरथ, उन्होंने वो अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया, और अश्वमेध यज्ञ के अंत में जिसकी प्रतीक्षा में वो सब थे, तो एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति उस यज्ञ से उत्पन्न हुए, और उनके हाथ में वो पायसम खीर जिसे वो लाए थे महाराज दशरथ की रानियों के लिए, जिसे खाने के वजह से अब भगवान अपने पार्षदों के साथ अवतीर्ण होंगे उनके गर्भ से। तो महाराज दशरथ ने उस पायसम खीर का आधा भाग माता कौशल्या को दिया, आधा भाग दिया कैकेयी को, और दोनों कौशल्या और कैकेयी ने कुछ कुछ भाग उसमें से दिया सुमित्रा को। और ये देने के पश्चात ब्रह्मा जी और सारे देवतागण वो श्वेत द्वीप गए विष्णु को पुकारते हुए। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को पुकार रहे हैं, याचना कर रहे हैं कि पृथ्वी में ये जो रावण है और रावण के सारे सदस्य पार्षद, इतना पाप वो कर रहे हैं, उपद्रव मचा रहे हैं, तो कृपया ये भार कम करने के लिए आप अवतीर्ण हो। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मैंने इसके विषय में पहले ही सोच रखा है। और फिर भगवान विष्णु सारे देवताओं को आदेश देते हैं कि सबसे पहले तुम सब जाओ और अपना विस्तार करो इस पृथ्वी पर, और किस प्रकार से विस्तार करना है यह भी उन्होंने सारे देवताओं को बताया। तो इंद्र को कहा कि इंद्र तुम उत्पन्न करो वाली नामक एक वानर को, और सूर्यदेव को कहा कि तुम उत्पन्न करो सुग्रीव नामक एक वानर को, और बृहस्पति जी से कहा कि तुम उत्पन्न करो तारा जो सुग्रीव की पत्नी होगी, वायुदेव से कहा किनको उत्पन्न करो श्री हनुमान जी को, और वरुण देव से कहा कि तुम जाकर उत्पन्न करो सुषेण को और 1 करोड़ वानर, जो आगे चलकर प्रभु रामचंद्र उस वानर सेना का उपयोग करेंगे लंका पर धावा बोलने के लिए। तो यहां पर देखिए एक और चीज देखने मिलती है कि प्रभु श्री रामचंद्र कितना उनका अद्भुत अवतार है कि ये सब देवताओं को आदेश दे रहे हैं क्या बनने के लिए, वानर। तो भगवान का और इन देवताओं का आदान प्रदान देखिए कि कितना प्रेम का आदान प्रदान है, कि इनको कहा कि मेरी सेवा यदि करनी है इस अवतार में तो वानर रूप में करो। अभी यदि हमें कहा जाता कि मनुष्य से, और वो भी मनुष्य कैसे, देवता, साधारण मनुष्य नहीं, देवता से बंदर बनो और उस रूप में प्रभु की सेवा करो, अरे बंदर तो दूर की बात है। जब कहा जाता है कि रामनवमी के कार्यक्रम में आ जाओ केवल, तो उसमें भी आने के लिए हमें कितना प्रचार करना पड़ा, लाउड स्पीकर ले जाकर, पैम्पलेट बांट बांट कर, सारे जगह पर पोस्टर लगाकर कि आइए आइए आपके उद्धार के लिए है। और फिर भी कई लोग कह देते हैं देखेंगे। तो यदि हम पैम्पलेट में छापते कि क्या आप वानर बनना चाहेंगे रामनवमी के दिवस पर भगवान राम की प्रसन्नता के लिए, तो कितने लोग आते यदि वो कहा जाता उनको वानर बनने के लिए। तो शरणागति देखिए इन देवताओं की, इतने सुंदर ये सारे देवता। जब भगवान ने कहा कि नीचे जाकर वानर बनो, तो कोई पूछा भाई वानर क्यों बनना है, आपके बहुत से अवतार हमने सुने हैं और आपने हमें आदेश दिया है अलग अलग प्रकार से आपको सहायता देने के लिए, परंतु ये वानर ये क्या सहायता करेंगे, और वो भी कितने वानर, करोड़ों की संख्या में वानर। तो फिर से ये जो आजकल कलयुग में तथाकथित भगवान बने बैठे हैं, अपने आप को भगवान कहते हैं, इनको कहो प्रभु रामचंद्र जी जो प्रामाणिक वास्तविक भगवान हैं, वो जब अवतीर्ण हुए तो उन्होंने सैकड़ों वानर को नियंत्रण में रखा। ठीक है, आपको हम 2 देते हैं, यहां पे उन्होंने कहा 1 करोड़, वरुण देव को कहा कि 1 करोड़ वानर उत्पन्न करो, तो हम केवल 2 देते हैं, 2 वानर को नियंत्रण में रखो। तो सारी भगवत्ता फिर वो वानर निकाल लेंगे। और उद्धव श्रीमद् भागवत में वो गुणगान कर रहे हैं भगवान का, वो कहते हैं कि आपकी लीलाएं इतनी अपरंपार है कि मैंने देखा जब आप अवतीर्ण हुए तो बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि वो मंत्र उच्चारण से आपका गुणगान कर रहे थे, परंतु आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया इन देवताओं के ऊपर, और वहीं आप वानरों की इतनी सेवा कर रहे थे, उनके मध्य में और आप रह रहे थे। अब देखिए जो स्वयं भगवान हैं वो यदि भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, हालांकि वो सारे वानर भक्त थे भगवान के, यदि भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है तो वो चाहेगा, कभी चाहेगा कि मैं कहीं पर गुजरूं तो मेरे इर्द गिर्द वानर होने चाहिए। कोई बहुत प्रसिद्ध या व्यापारी है या धनवान व्यक्ति है, वो यदि किसी 5-स्टार होटल में जाता है तो वानरों को ले जाता है अपने साथ, या किसी पार्टी में जाएगा तो वानरों को ले जाएगा, एक प्लेट इनका भी बनाओ मेरे साथ वानरों का। परंतु यहां पर हम देखते हैं ऑल्टर में प्रभु श्री रामचंद्र जी, बिना हनुमान जी के राम दरबार पूरा नहीं होता। हालांकि हनुमान जी ने बहुत सुंदर बात कही, वो हम हनुमान जयंती के दिन कहेंगे, बहुत ही सुंदर बात है, यदि आपको सुननी है तो इसके पश्चात हनुमान कथा शुरू होने वाली है, उसमें आप आना। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में उद्धव जी कहते हैं कि आप इस अवतार में अपने आप को गर्वित मान रहे थे जब आप वानरों से घिरे हुए थे। ये है भगवान और उनके भक्त। तो जब इनको, इन रानियों को, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को पायसम खीर पिलाया गया, तो 4 ऋतुएं बीती और उसके पश्चात फिर वर्णन आता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने पार्षदों के साथ, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ, कैसे वो, उन्होंने कौशल्या, सबसे पहले रामचंद्र जी ने कौशल्या के गर्भ में प्रवेश किया और बहुत सुंदर वर्णन आता है रामायण में कि जैसे ही कौशल्या के गर्भ में अभी प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रवेश किए हैं तो कौशल्या इतनी सुंदर दिखने लगी, जैसे श्रीमद् भागवत में देवकी के विषय में कहा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने प्रवेश किया देवकी के गर्भ में तो देवकी इतनी सुंदर लगने लगी कि कंस भी जब उसने देखा देवकी को तो वो समझ गया कि इतनी सुंदर देवकी कभी नहीं दिखी। अभी इस संसार में जो गर्भवती स्त्री होती है वो ज्यादा सुंदर नहीं दिखती, परंतु जब भगवान किसी स्त्री के गर्भ में जाते हैं, उसे गर्भवती करते हैं, तो भगवान उसे इतना सुंदर बना देते हैं कि यहां पर कंस गुणगान कर रहा है देवकी की सुंदरता को कि तुम्हें इतना सुंदर, इतना तेजस्वी मैंने आज तक नहीं देखा। और देवकी कहां थी? कंस के कारागार में थी वो। ऐसा नहीं कि वहां पर कोई हैलोजन लाइट, ये सब कुछ स्पॉटलाइट लगाया था और देवकी का तेज उससे बढ़ाया गया था। बिना किसी ये सारे उपकरणों के पूरा जो कारागृह था कंस का, वो ऐसे ददीप्यमान हो गया था और कंस देवकी को देखने मात्र से वो डर रहा था कि इतनी तेजस्वी लग रही है, अवश्य ही ये जो 8वां पुत्र है भगवान विष्णु जिसे कहा गया है वो प्रवेश किया है। वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी जब उन्होंने कौशल्या के घर में प्रवेश किया तो सारे मंगल चिन्ह दिखने लगे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारे। कहा गया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब वो प्रकट होने वाले थे उसे पहले ही मंगल भवन अमंगल हारी, जो मंगल के भवन हैं और जो अमंगल को हर लेते हैं, वो दशरथ नंदन द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, वो मुझे द्रवित करें, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी। तो सब जगह मंगल चिन्ह दिखने लगे और मंगल चिन्हों के साथ साथ जो सारे राक्षस थे वो सारे राक्षसों के अंदर एक अलग प्रकार का भय उत्पन्न हो गया। जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी कौशल्या के घर में प्रवेश किए, राक्षसों के हृदय में किसने प्रवेश किया? भय ने। तो अचानक वो भयभीत हो गए कि अचानक ये भय कहां से हो रहा है, हमें किसका हो रहा है। और कहा गया है कि जब भगवान अवतीर्थ होते हैं तो ये दोनों प्रकार के लक्षण दिखते हैं। भगवान के भक्तों के लिए सारे मंगल चिन्ह, और जो अभक्त होते हैं, राक्षस होते हैं, उनके लिए सारे अमंगल के चिन्ह वो देखते हैं। जैसे भगवान श्री वराह देव, वो अब अवतीर्ण होने वाले थे तो दिति, माता दिति किसकी माता थी? वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, इन दोनों को तो आप लोग सब जानते होंगे अच्छे से, विश्व विख्यात राक्षस थे ये दोनों भाई। और माता दिति इन दोनों की माता थी। और वराहदेव ने वध किया किसका? हिरण्याक्ष का। और हिरण्यकशिपु का किसने किया? भगवान श्री नरसिंहदेव, जिनका आविर्भाव दिवस भी आ रहा है। तो जब वराहदेव वो अवतरित हुए तो माता दिति के स्तनों से रक्त चूने लगा। अब वर्णन आता है कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो उनकी जो माता है उनके स्तनों से दूध बहता है, प्रेम का दूध। परंतु यहां पर दिति के स्तनों से रक्त बहने लगा, क्योंकि यह एक लक्षण था कि अभी दिति का जो पुत्र है यह हिरण्याक्ष, इसका वध करने के लिए वराहदेव अवतरित हुए हैं। तो उसी प्रकार से सारे जो राक्षस थे रामचंद्र जी के प्रकटीकरण के समय, वो सारे राक्षस अब भयभीत होने लगे। और यहां पर अयोध्या नगरी में सारे शुभ चिन्ह दिखने लगे। जितने भी शुभ नक्षत्र थे वो सब एक साथ वहां पर उपस्थित हुए। और वो एक साथ उपस्थित भगवान का मंगल करने के लिए नहीं, भगवान का मंगल कौन करेगा, वो तो मंगल भवन है, वो भवन है मंगल के, सब मंगलमय कार्यों के। तो ये सारे मंगल चिन्ह शुभ नक्षत्र एक साथ आए स्वयं का मंगल कराने के लिए, भगवान का दर्शन कर। जैसे कई बार देखते हैं कि ये जो नेता होते हैं जब ये कहीं पर आते हैं, जैसे इंदिरा गांधी एक बार बनारस जब जा रही थी तो वहां पर जब समाचार मिला कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आ रही हैं, तो सबसे पहले सब सड़कों को साफ किया गया और सभी को वहां पर लगाया गया, सभी चीज को पेंट कराया गया। और फिर एक और प्रयोजन सभी ने क्या किया वहां के सरकार ने, कि जितने भी भिखारी भिकमंगे हैं बनारस के सबको छिपा दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो उनके सामने कोई भी दुखियारा व्यक्ति नहीं सामने दिखना चाहिए, कोई भिकमंगा दिखना नहीं चाहिए। हालांकि बाद में तो सब आ गए, जब इंदिरा गांधी चली गई तो सारे भिकमंगे फिर ड्यूटी पे आ गए, परंतु उनके सामने कोई भी नहीं आना चाहिए, किसी भी प्रकार का दुख उन्हें दिखना नहीं चाहिए, यह दिखना चाहिए कि सब कुछ शुभ चल रहा है, मंगल हो रहा है यहां पर। तो देखिए, कोई साधारण सा नेता जो एक इस संसार का बद्ध जीवात्मा है, जब वो कहीं पर जाता है तो देखिए कितने अलग अलग प्रकार के मंगल चिन्ह को उत्पन्न करने की चेष्टा लोग करते हैं। तो सोचिए, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जो सबके स्रोत हैं, जब वो आज के दिन अवतीर्ण हुए तो सभी, पूरी जो सृष्टि थी एकत्रित हो गई सभी प्रकार के मंगल चिन्हों को दिखाने के लिए, ताकि भगवान को प्रसन्नता मिले। जैसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जब किसी की शादी होती है तो व्यक्ति वो जो दूल्हा है जब वो घोड़ी पे सवार होता है और वो देखता है कि कितने लोग आए हैं मेरी शादी के बारात में और शादी के इस प्रोसेशन में, तो जब वो देखता है कितने सारे लोग आए, इतने नाच रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, गान बजाना सब कुछ हो रहा है, तो उसे बहुत प्रसन्नता होती। मानो यदि वो अकेला ही केवल घोड़ी पे बैठे जा रहा है, वो और घोड़ी, तो कैसा लगेगा उसको। परंतु जब वो देखता है कि अरे ये रिश्तेदार भी आया, ये मित्र भी आया, सभी आए और सभी आकर हाजिरी देते हैं, मैं आ गया, और वो जानते हैं हाजिरी किस लिए देते हैं, क्योंकि वो मेरी शादी होगी तो तुम्हें भी हाजिरी देनी है। तो जब एक दुल्हा देखता है कि उसके सभी सगे संबंधी और मित्र और सभी जिनको न्योता दिया है सभी वहां पर है, तो वो बहुत उल्लासित होता है। उसी प्रकार से जब भगवान अवतीर्ण होते हैं तो भगवान के जितने भी पार्षद हैं, भक्त हैं, ये सभी वो एकत्रित होते हैं भगवान को उल्लास देने के लिए। और बहुत ही सुंदर वर्णन है कि आज के दिन चैत्र मास, ये जो महीना है ये चैत्र का महीना है, और इसे शास्त्रों में मधु मास भी कहा गया है। मधु मास इसलिए कहा गया है कि इस महीने में मधु शहद जो है वो बहुत उत्पन्न होता है, उसकी उत्पत्ति बहुत होती है, तो इसीलिए इस मास को मधु मास भी कहा गया है। हालांकि अंग्रेजी में ये जो शब्द दिए गए हैं मार्च, इसका कोई अर्थ नहीं है। देखिए कितना सुंदर शब्द है मधु मास, मार्च मारपीट करने के लिए हो सकता है कोई महीना। तो चैत्र का मास जिसे मधु मास भी कहा गया है, चैत्र के मास में शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि, और नौमी तिथि में अभिजीत मुहूर्त बहुत ही सुंदर मुहूर्त जिसे कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण भी अभिजीत मुहूर्त में पैदा हुए थे, अभिजीत मुहूर्त था उनका और रोहिणी नक्षत्र था भगवान श्री कृष्ण का। और यहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि और अभिजीत मुहूर्त, और वो कौन से वार में पैदा हुए थे, भौमवार जिसे कहते हैं मंगलवार, और आज भी मंगलवार ही है। मंगल भवन अमंगल हारी। और समय क्या था, मध्य दिवस, मध्याह्न का समय था, जिसमें न तो ज्यादा गर्मी होती है और न ज्यादा ठंड होती है। नेचुरल एसी उत्पन्न हो गया था अयोध्या में अपने आप, कुछ लगाना नहीं पड़ा था। और बहुत ही सुंदर वर्णन है अयोध्या का उस समय जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अवतीर्ण हुए, कि शीतल मंद सुगंधित समीर, जो हवा बह रही थी, समीर जो बह रही थी वो बहुत शीतल थी और सुगंधित हवा बह रही थी, और कुसुमित वन गिरिगन मनियारा कहा गया है कि जितने भी वन थे, उपवन थे, वो सब कुसुम पुष्पों से भर गए थे। गिरिगन मनियारा, जो गिरि पर्वत थे वो सारे पर्वत पहले उन्हें खोदकर उनमें से मणि निकाला जाना, कोई अगर मणि चाहता था तो खोदकर निकालना पड़ता था, परंतु जब प्रभु रामचंद्र जी प्रकट हुए, अवतीर्ण हुए, तो ये सारे पर्वतों में जितने भी मणि थे वो बाहर आकर चमकने लगे अपने आप। गिरिगन मणियारा कुसुमित वन, और फिर कहा गया है श्रव ही सकल सरित अमृत धारा, जितने भी सरित सरोवर नदियां थी इनके अंदर जल नहीं, जल के बदले अमृत बन गया सब कुछ। तो नदियों में अमृत, सरोवरों में अमृत, ये सभी में अमृत सब दिख रहा था। और जैसे ही ये समाचार अब ब्रह्मा जी को मिला कि समय आ गया है, शुक्ल पक्ष की वो नौमी तिथि आ गई है, प्रभु श्री रामचंद्र जी अब प्रकट होने वाले हैं अयोध्या नगरी में। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत समाचार दिया सभी देवताओं को, और सभी देवता वो तुरंत अपने अपने विमान लेकर वो ब्रह्मा जी के सत्यलोक के सामने प्रकट हो गए, अपना विमान वहां पार्क किया, और सभी अब वहां से निकलने वाले थे अयोध्या नगरी की तरफ। तो वर्णन है कि बड़े बड़े विमान, बहुत से कई ऐसे विमान केवल पुष्पों से भरे हुए थे, कई विमान केवल पुष्पों से, कई विमान आभूषणों से, कई विमान अप्सराओं से, कई विमान गंधर्वों से, ये सब विमान। और ऐसा नहीं कि ये सब पुष्प और आभूषण को जाकर किसी फ्लावर मार्केट से खरीदना पड़ा, इन्हें किसी दुकान में जाकर सब इकट्ठा करना पड़ा। जो ऊपर के लोक हैं देवताओं के पास, ये सहज ही ये सब चीजें होती हैं उनके पास, और एकमात्र उद्देश्य ये सब का होता है जब भगवान अवतीर्ण होते हैं तो वहां पर उनकी सेवा में उपयोग में लाने के लिए। तो सारी जो अप्सराएं थी वो नृत्य करने लगी विमानों के अंदर ही, अभी तक पहुंचे नहीं है, विमानों के अंदर नृत्य प्रारंभ कर दिया उन्होंने। और इस प्रकार का नृत्य अप्सराएं कर रही थी पूर्ण ऐश्वर्य से, अपना पूरा वैभव दिखाते हुए। और सारे अन्य जो देवता थे वह आश्चर्यचकित हो गए कि ये अप्सराएं पहले कभी इस प्रकार से ऐश्वर्य अपना नहीं दिखाती थी, केवल जब भगवान अवतीर्ण होते थे तभी यह पूरा ऐश्वर्य अपना दिखाती थी नृत्य में, या जो गंधर्व जब गाते थे वो अपने गीत में। तो इस प्रकार से ये सभी आए और उन्होंने पहले तो पुष्पों की वर्षा की अयोध्या नगरी के ऊपर, और सारे अयोध्या निवासी ऊपर देख रहे थे एकटक होकर कि पूरा जो आकाश का मंडल था वो भर गया था इन विमानों से। तो पहले तो सब जगह पर विमान ही विमान दिख रहे थे, और फिर वहां से ये पुष्पों की वर्षा अयोध्या नगरी के ऊपर। तो केवल उन्हें दिख रहे थे केवल पुष्प ही पुष्प सब जगह पर। तो वास्तविक रामनवमी ये देवता मनाते हैं, ब्रह्मा जी और अन्य देवता। आज भी, आज के दिन भी बलि महाराज मना रहे होंगे सुतल देश में, ध्रुव महाराज मना रहे होंगे ध्रुव लोक में, ये सभी देवता अपने अपने लोक में रामनवमी मना रहे होंगे। इस प्रकार से वो रामनवमी मनाते हैं। हम तो क्या रामनवमी मनाते हैं इनके सामने। देखिए नासिक धाम में कितने लोग आए हैं रामनवमी को मनाने के लिए, आप लोग कुछ गिने चुने हैं। और यदि सबके घरों में जाए तो कोई टीवी देख रहा है, कोई कोई रेस्टोरेंट में घूम रहा है, कोई पिक्चर देख रहा है आज के दिन, तो कोई पता नहीं आज रामनवमी भी है क्या और क्या करते हैं, किसका गुणगान होना चाहिए। तो हमें पता नहीं वो जो ब्रह्मा जी और सारे देवता कैसे रामनवमी मनाते हैं, यहां पे वर्णन दिया है। जैसे यदि किसी मच्छर को यहां पर पूछा जाए कि यहां पर क्या हो रहा है बताओ, तो मच्छर को क्या पता, वो तो केवल यही कहेगा कि अरे आज मेरा फीस्ट अच्छा हो रहा है यहां पे, इतने सारे ब्लड बैंक एक साथ बैठे हुए हैं और एक साथ हैं बैठे हुए और हिल भी नहीं रहे, तो मच्छरों को क्या पता है कि हम क्या कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमें क्या पता ये बड़े बड़े जो देवता हैं ये कैसे रामनवमी मनाते हैं। केवल यहां पर छोटा सा संक्षिप्त रूप में वर्णन दिया गया है रामायण में कि ब्रह्मा जी और अन्य देवता कैसे उन्होंने रामनवमी मनाई। तो इस प्रकार से वर्णन है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अब अवतीर्ण हो गए तो सबसे पहले जिनका सौभाग्य यहां पर दर्शाया गया है वो है माता कौशल्या का, कि माता कौशल्या का सौभाग्य बताया गया है। और हम ये एक बहुत सुंदर भजन बचपन में भी गाया करते थे और बहुत प्रसिद्ध है, यदि आप लोगों को ये भजन याद है तो मेरे साथ साथ आप गा सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब प्रकट हुए तो माता कौशल्या ने किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी अब प्रकट हुए हैं तो उनका गुणगान किस प्रकार से किया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज जारी भूषण वनमाला तनु घन श्यामा शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुत तोरी कही विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञाना पीत अमाना वेद पुराण ध्वनंता भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज जारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी अस्तुत तोरी कह विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञान पीत माना वेद पुराण ध्वनंता। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान को यहां पर दीन दयाल कहा गया है कि वो जो भक्तों के ऊपर विशेष रूप से कृपा करने के लिए प्रकट होते हैं वो दीन दयाल। वो प्रकट हुए सबसे पहले उन्होंने हित किसका किया? कौशल्या हितकारी। तो कौशल्य का गुणगान किया गया है यहां पर। क्या सौभाग्य होगा उस माता का जिसने भगवान जो परब्रह्म है पूर्ण पुरुषोत्तम उनको उन्होंने अपने गर्भ में स्थान दिया। हालांकि भगवान स्वयं अपनी इच्छा से उन्होंने माता कौशल्या को चुना अपनी माता के रूप में। तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। फिर आगे सुंदर भजन में कहा गया है हर्षित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी कि भगवान का जो रूप था वो बहुत अद्भुत था। जैसे वो प्रकट हुए, जैसे भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए कंस के कारागृह में तो निज आयुध अपने सारे आयुधों के साथ वो प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, वैसे ही यहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने पूरे आयुध के साथ और इतने वो सुंदर दिख रहे थे प्रभु श्री रामचंद्र जी कि यहां पर इतना सुंदर उनका वर्णन उसका विश्लेषण किया गया है। अब देखिए कोई व्यक्ति इस संसार में यदि चार हाथ के साथ पैदा हो, कोई बालक, छोटे छोटे बालक यहां बहुत दिखते हैं, तो मान लो कि कोई शिशु इस संसार में चार हाथ के साथ पैदा हो तो लोग तो डर जाएंगे, तुरंत वो माता पिता किसी सर्जन को बुलाएंगे, दो हाथ निकालो, ये कहां से दो हाथ आ गए। परंतु अद्भुत रूप निहारी, और कौन भगवान श्री रामचंद्र जी का रूप निहार रहा था? मुनि मन हारी, जो मुनि, ऐसे मुनि जो हर समय ये पूरे संसार का ऐश्वर्य को जिसने त्याग दिया है, ये पूरे संसार का जो ऐश्वर्य है ये मुनियों को बिल्कुल भी प्रलोभित नहीं करता, वो उनका मन हर लिया प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनी सुंदरता से। उनके सुंदर केश, घुंघराले बाल, अभी संसार में जब कोई पैदा होता है छोटा सा शिशु एक बाल सर पर नहीं होता, और जब अंत समय आता है तब भी बाल चले जाते हैं। तो कहा गया है कि एक छोटा सा शिशु जब इस संसार में आया है और वही व्यक्ति जब अंत समय जाता है तो बहुत से लक्षण एक समान होते हैं उनके, सर पे बाल नहीं, मुंह में दांत नहीं, और चल नहीं सकता, और जो कुछ करता है बिस्तर पर ही करता है। तो ये दशा होती है जो व्यक्ति अभी आया है और अब जो जा रहा है। तो यहां पर भगवान का जो अद्भुत रूप था उसे निहार रहे थे ये सारे ऋषि मुनि, उनके मन को हर रहे थे प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने इस रूप से। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध बुझ जारी, कि उनकी जो कांति थी चमचमाता उनकी जो त्वचा थी वो एकदम चमक रही थी, तेज निकल रहा था उनकी त्वचा से। अब इस भौतिक संसार में जब कोई शिशु पैदा होता है तो वो गर्भ जल, और जो गर्भ जल होता है माता का, वो सब कुछ उसके ऊपर लेपा हुआ होता है और फिर उसे साफ किया जाता है और नंग धड़ंग पैदा होता है व्यक्ति इस संसार में। फिर जब बड़ा होता है तो नाप छाप कर कुछ पहनाया जाता है, कपड़ा पहनो थोड़ा। यहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी भूषण वनमाला नयन विशाला निज आयुध, अपने सारे आयुध वनमाला और अस्त्र शस्त्र और वस्त्रों के साथ विभूषित, सारे गहनों के साथ सुसज्जित प्रभु श्री रामचंद्र जी वो अवतरित हुए। और आगे कहा गया है, कह दुई कर जोरी अस्तुत तोरी, कि कौशल्या तुरंत वो दोनों हाथ जोड़कर वो अब स्तुति कर रही है। कौन सी माता स्तुति करती है अपने शिशु का? यहां पर इस संसार में जब कोई शिशु पैदा होता है तो सबसे पहले तो रोना शुरू करता है, और यदि नहीं रोए तो डॉक्टर को मारना पड़ता है कि रो, क्योंकि रोएगा तो फिर सांस शुरू होगी। और कौन डॉक्टर या माता पिता आकर अभी शिशु की स्तुति कर रहे हैं, और वो करें भी तो उस शिशु को क्या समझ में आएगा, उसे कुछ समझ में नहीं आता, मैं कौन हूं, ये कौन है, सब कुछ इतना अलग लगता है। पहले तो 9 महीने इतने तकलीफ में वो रहा, अब जैसे ही बाहर आता है तो सुई ठोसी जाती है तो और तकलीफ शुरू। परंतु यहां पर जब प्रभु प्रकट होते हैं तो स्तुति कर, दुही कर जोरी अस्तुत तोरी, कही विधि करहु अनंता, वो भगवान को अनंत कह रही हैं और कहती हैं माया गुण ज्ञाना पीत अमाना, आप माया के परे हैं हे भगवान। और एक बहुत सुंदर कथा है रामायण में इसको दर्शाते हुए कि कैसे भगवान माया के परे हैं, क्योंकि विशेष रूप से रामचंद्र जी ने जो लीलाएं की, लोग समझते हैं कि भाई रामचंद्र जी भी क्या, उन्हें भी वनवास मिला और पत्नी के विरह में विलाप करते हुए वो देखे जा रहे थे, तो फिर मुझमें और उनमें क्या इतना अंतर है, जब मेरी पत्नी मायके जाती है तो मैं भी थोड़ा विलाप करता हूं या कई बार खुश हो जाता हूं। तो जो पिक्चरों में दिखाया जाता है कि जब प्रियतम दूर हो जाता है तो कैसे वो लोग गाते हैं कि अरे भाई तुम्हारी याद आ रही है, तो ये प्रभु रामचंद्र जी ये भी ऐसे ही विलाप कर रहे थे। जब सीता का हरण हुआ तो प्रभु रामचंद्र जी जब विलाप कर रहे थे तो विलाप करते करते वो किन से पूछ रहे थे, वृक्षों से पूछ रहे थे, यहीं पर पंचवटी में, यहीं पर वो वृक्षों से जाकर पूछ रहे थे कि हे वृक्ष तुमने सीता को देखा, पक्षियों को पूछ रहे थे, अब देखिए ये विलक्षण, भगवान भी जब विलाप करते हैं तो कितना विलक्षण विलाप करते हैं। इस संसार में जब किसी से बिछुड़ जाता है कोई व्यक्ति, तो कभी देखा नहीं गया कि वृक्षों को पूछ रहा है कि तुमने मेरे प्रियतमों को देखा है, पक्षियों को कोई पूछता है। यहां पर भगवान देखिए अपनी भक्ति प्रकट कर रहे हैं विलाप के द्वारा, तो वृक्षों को, पेड़ों को, पक्षियों को, इन सबको पूछ रहे हैं क्या सीता को देखा। और ये दृश्य शिवजी देख रहे थे, तो शिवजी अपना नमस्कार करते हैं और वो अपना दंडवत कर रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की इस विलाप की लीला को देखते हुए। तो जब शिवजी अपना नमस्कार दे रहे थे भगवान को, तो सती उनकी पत्नी, उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ, पूछे कि ये किसे नमस्कार कर रहे हो, आप महादेव हो, और एक साधारण मनुष्य जो अपनी पत्नी के लिए विलाप कर रहा। शिवजी ने कहा साधारण, अरे ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो सती ने कहा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो पता नहीं इन्हें कि कहां पर गई है इनकी पत्नी। हाँ, मैं थोड़ा अपने पिता के घर पे चले जाती हूं तो तुरंत आपके पार्षद पहुंच जाते हैं और आपको तुरंत ज्ञान हो जाता है मैं कहां हूं, और आप कहते हैं कि ये आपके आराध्य देव हैं और इन्हें ये भी पता नहीं। देखो पेड़ों से पूछ रहे हैं, पूछा तो भी किसे पूछ रहे हैं, यदि आकर आपसे पूछा होता तो ठीक है, पेड़ों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, ये कौन से भगवान हैं। तो शिवजी वो कहे कि मेरे पास समय नहीं सब बताने का, मैं तो केवल इस लीला का दर्शन करना चाहता हूं। तो सती कही नहीं नहीं मुझे बताओ, मुझे संतुष्ट करो कि ये कैसे भगवान है, मुझे कोई लक्षण नहीं दिख रहे भगवान के इनके अंदर, ये तो माया के अधीन दिख रहे हैं, यहां पर मोह माया के अधीन दिख रहे हैं। तो शिव जी ने कहा अब मैं इनके अधीन हूं तो मैं इन्हें आदेश नहीं दे सकता कि ये अपने आप को बताए तुम्हें कि ये कौन है। तो सती जी कहती हैं ठीक है मैं परीक्षा करती हूं इनका। तो अब दोनों यहां पर पंचवटी धाम में आए, शिव और सती दोनों यहां पर आए। तो अब सती परीक्षा करेंगी प्रभु श्री रामचंद्र जी का। तो शिव जी हंस रहे थे कि ये स्त्री क्या सोच रही है। और वर्णन है काकभुशुंडी, उन्होंने कहा है कि सती जो परीक्षा करने जाने वाली थी अब प्रभु श्री रामचंद्र जी का, वो उस प्रकार से था जैसे एक चींटी अब स्केल लेकर जाती है समुद्र को नापने के लिए कि देखते हैं समुद्र कितना गहरा है, कितना लंबा चौड़ा है। कौन जा रही है? एक चींटी जा रही है समुद्र को नापने के लिए। तो सती जब जा रही थी प्रभु श्री रामचंद्र जी को उनकी परीक्षा लेने के लिए तो उसी समान थी। तो सती ने कौन सा परीक्षा का पेपर सेट किया देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी को उनकी परीक्षा करने के लिए कौन सा पेपर सेट किया सती ने? सती अपने आप को सीता के रूप में परिवर्तित कर दी। तो सती हो गई सीता, और वो ये प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिखाना चाहती थी कि तुम विलाप कर रहे हो, ये मैं यहां पर सामने हूं तुम्हारे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी फिर वही अरे अरे इतना मैं ढूंढ रहा था कहां चली गई थी ये वो, फिर बाद में शिव जी को बताने ये देखो तुम्हारे भगवान, एक तो जानते नहीं कि कहां पर इनकी पत्नी है और जो पत्नी नहीं है उनको पत्नी मान रहे हैं। तो ये जाल बिछा रही थी सती प्रभु श्री रामचंद्र जी को उसमें फंसाने के लिए। तो सीता का एकदम जैसे सीता दिखती, जैसे सीता चलती बोलती, सब हाव भाव सीता के सती ने बिल्कुल उसी प्रकार का रूप लिया। और वो जैसे प्रभु रामचंद्र जी अब वन में विचरण कर रहे हैं, वृक्षों को पूछ रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तो सती अब सीता के रूप में वहीं थोड़ा आसपास घूमती हुई अपने को दिखा रही थी कि प्रभु रामचंद्र जी मुझे देखेंगे। तो प्रभु रामचंद्र जी ने देखा भी नहीं, वो थोड़ा यहां से कभी इस साइड से आती कभी उस साइड से आती, और प्रभु रामचंद्र जी केवल वृक्षों से पूछ रहे हैं। तो पहले सती को लगा दिख नहीं रहा क्या, मैं यहां से इतने सामने से आ रही हूं, दिखाई नहीं दे रहा, नंबर बढ़ गया। तो फिर वो एकदम सामने, अब रामचंद्र जी के एकदम सामने खड़ी हो जाती कि अब एकदम सामने आ जाऊंगी तो फिर पता लग जाएगा। तो जैसे ही वो निकली ये सब अपना रूप लेकर, तो शिव जी हंस रहे थे। तो शिव जी ने कहा आग से खेल रही हो तुम, ठीक है जाओ, तब तक मैं अपनी माला पूरी करता हूं। तो शिव जी अपनी माला पूरी कर रहे थे, समय मिल गया थोड़ा माला पूरी करने का उनको, और सती को भेज दिया जाओ जो परीक्षा करनी है करो। तो अब सामने रामचंद्र जी के सामने वो सती खड़ी हो गई। तो रामचंद्र जी जैसे ही सती को देखा दंडवत किया उन्होंने, और दंडवत कर कहा अरे माते पार्वती आज आप अकेली, भोलेनाथ जी कहां हैं? बस जैसे ही सती ने यह सुना तब तो फिर जितना भी वो रूप था जो बनाकर आई थी वो सारा मेकअप निकल गया। अब बोलने के लिए एक शब्द नहीं, वो थरथर कांप रही है। तो भगवान पूछ रहे हैं क्या हुआ, भोलेनाथ जी कहां है, अकेली कैसे आज इस वन में? तब क्या बोले, अब अकेली क्यों है वो भी जानती हैं और भगवान भी जानते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने फिर सती को जाते जाते, सती ने कहा नहीं मैं बाद में आकर बताती हूं, थोड़ा भोलेनाथ जी बगल में माला कर रहे हैं, थोड़ा उनके साथ बैठकर मैं भी थोड़ा एक्स्ट्रा माला करती हूं आज। तो जैसे ही सती अब जा रही थी वापस, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपना लक्ष्मण का और सीता का निज स्वरूप सती को जाते जाते दिखा दिया कि तुम सोच रही हो कि मुझे पता नहीं सीता कहां पर है, तुम सोच रही हो कि मैं कोई साधारण पति के समान विलाप कर रहा हूं अपनी पत्नी के लिए, ये देखो जाते जाते तो एक ट्रेलर दे दिया सती जी को, और सती जी वहां पर जाकर अब शिव जी वहां पर हंस रहे हैं, हो गई परीक्षा? तो अब सती कहती हैं हां मैं गई थी, क्या परीक्षा ली? कुछ नहीं, वो तो मुझे पहले पता था वो तो रामचंद्र जी हैं, आपने कहा तो मैं रास्ते में समझ गया। तो शिव जी कहे रास्ते में समझ गई, क्या रास्ते ने सब कुछ समझा दिया तुम्हें, बीच में पत्थरों ने पेड़ों ने वृक्षों ने? कुछ समय पहले तो अब इतना वाद विवाद चल रहा था कि ये कौन है, मनुष्य है भगवान है, कोई विश्वास नहीं हो रहा था, और अचानक तो शिव जी फिर वो स्वयं अंतर्यामी हो समझ गए कि ये सती ने क्या किया है। तो यहां पर देखिए वही बात को दर्शा, वही गुण को दर्शा रही है कौशल्या, वो गुणगान कर रही है, माया गुण ज्ञाना पीत अमाना वेद पुराण ध्वनंता। जो वेद और पुराण को ध्वनित करने वाले हैं आप, इस संसार में जब कोई शिशु पैदा होता है तो वेद पुराण तो दूर की बात है, वो स्वयं कौन है वो नहीं पता उसे। जैसे अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई मेला लगता है किसी गांव में, तो परिवार जब जाता है और बच्चा छोटा रहता है तो अक्सर ये मेले जो होते हैं इनमें बच्चे खो जाते हैं, कुंभ मेला में एक पूरा शिविर होता है, खोए पाया शिविर, उसके अंदर कोई बच्चा पाया जाता है कोई बच्चा खोया, वहां पर वो आके रिपोर्ट करते हैं। और मुझे तो लोग बता रहे थे कि ज्यादातर जिनको अपने वृद्ध माता पिता से पिंड छुड़ाना होता है वो पुत्र अपने माता पिता को कहते हैं कुंभ मेला आपको हम ले चलते हैं, तो प्रसन्न होते हैं कि हमारा पुत्र देखो कितना सुशील है, हमें तीर्थ यात्रा करा रहा है, और वहां जाकर उनको छोड़ देते हैं और बेचारे वो घूमते रहते हैं, अरे हमारे पुत्र ने हमको कहां छोड़ा, कहां गए, तो खोए पाए शिविर में फिर। तो आजकल ये सत्य बात है, ऐसे होता है, उनको वहां पर छोड़कर आ गए क्योंकि उनके इंद्रिय भोग में वो बाधा बन रहे थे, तो वो बेचारे वहां पर फिर कोई वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है उन्हें। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब अपने माता पिता के साथ जाते हैं तो अक्सर माता पिता क्या करते हैं, घर का जो पता होता है, एड्रेस, उसे लिखकर उसके जेब में डाल देते हैं, उसके जो शर्ट का जेब है उसके अंदर डाल देते हैं, ताकि यदि खो भी जाए तो वो अब उसे बता देते हैं कि ये दिखा देना, अगर किसी खो गया तो ये दिखा देना। तो वो इतना अज्ञानी होता है वो बच्चा, उसे पता भी नहीं होता है कि जेब में क्या डाला है, तो यदि खो गया तो उसको देखा जेब में उसका पता है तो वहां पर पहुंचा देता है कोई व्यक्ति। इतने अज्ञानी होते हैं हम जब पैदा होते हैं, और बचपन में एक कुत्ता भी यदि खो जाए तो फिर से घर पर आ जाता है वो खोया हुआ कुत्ता, किसी घर का पालतू कुत्ता वो भी आ जाता है, परंतु मनुष्य उसको चिट्ठी डालनी पड़ती है और ये सब कुछ होने के पश्चात फिर। आजकल तो ये सब बताया जाता है पिक्चरों में कि दो भाई थे और बचपन में वो मेले में खो गए और फिर बड़े हो गए, वो यहां पर बड़ा हो गया, वो एक गुंडा बन गया, ये पुलिस बन गया, तो मेले में खोए हुए अब बड़े हो गए, एक गुंडा बन गया, एक पुलिस बन गया है। और फिर उस पिक्चर के अंत में दिखाया जाता है दोनों एक दूसरे से अब लड़ाई कर रहे हैं, और फिर लड़ाई करते करते निशान, अरे ये वही निशान, तुम्हारा भी निशान, मेरा भी निशान, भाई है, आओ। तो क्या वेद पुराण को ध्वनित हम करेंगे जब खुद के विषय में हमें कुछ पता नहीं कि हम हमारे माता पिता कौन हैं, कहां से हम आए, कहां जा रहे हैं। परंतु यहां पर कौशल्या बता रही हैं कि सारे वेद पुराण को ध्वनित करने वाले आप हैं। इससे यह भी समझ में आता है कि माता कौशल्या स्वयं वेद पुराण को जानती थी, तो वह अपने उदाहरण से सिखा रही हैं कि वेद पुराण केवल जो संस्कृत विद्वान पंडित होते हैं उनके लिए नहीं होता, सभी के लिए है वेद पुराण, स्त्रियों के लिए भी है, उन्हें भी पढ़ना चाहिए। और इस कलयुग में ये सारे वेद पुराण हमें मिले हैं श्रीमद् भागवतम में और श्रीमद् भगवद गीता के रूप में। तो माता कौशल्या अब प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने पूरे ऐश्वर्य में देखती हैं, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को कहती हैं कि आप फिर से मेरे शिशु के रूप में आइए। तो पूछते हैं क्यों, क्यों मैं शिशु के रूप में आऊं, मैं भगवान हूं। तो कौशल्या कहती है वो तो हम सब जानते हैं, परंतु कोई विश्वास नहीं करेगा कि आप मुझसे पैदा हुए हैं, क्योंकि इतना आपका सुंदर ये स्वरूप और चतुर्भुज रूप और आपके निज आयुध के साथ आप यदि रहेंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि आप मेरे पुत्र के रूप में आए हैं, तो आप फिर से छोटे से बालक बन जाइए। और फिर वो इसलिए कह रही थी, ये नहीं कि उनका गुणगान हो कि मेरे पुत्र देखो इतने सुंदर वो प्रभु रामचंद्र जी, वो इसलिए प्रभु रामचंद्र जी को बालक रूप में आने के लिए कह रही थी क्योंकि फिर वो अपना स्तनपान करा सकी, इसीलिए सेवा के लिए, सेवा हेतु, स्वयं के गुणगान हेतु नहीं, सेवा हेतु। और तुरंत फिर भगवान श्री राम वो एक बाल रूप में प्रकट हुए कौशल्या माता के सामने, और भगवान रोना शुरू किए। तो भगवान क्यों रो रहे थे, कोई साधारण शिशु तो रोता है पैदा होते, भगवान क्यों रो रहे थे, भगवान इसलिए रो रहे थे कि भगवान सबको सूचना दे रहे थे मैं आ गया, मैं पैदा हो गया। इसलिए भगवान रो रहे थे। इसलिए कहा गया है कि संसार में जब हम पैदा होते हैं तो हम रोते हुए पैदा होते हैं, तो हम रोते हैं और सभी लोग हंसते हैं। जब शिशु पैदा होता है तो कहां है रोता रहता है और सभी अरे 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 लड़का हो गया, थाली बजाओ, ये करो, पेड़े बांटो, तो उस शिशु को छोड़कर सभी प्रसन्न रहते हैं। परंतु एक कवि ने कहा है कि हमारी करनी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए जब हम जाएं इस जग से। और वो कौन सी करनी होनी चाहिए? भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति, कि जब हम इस संसार से जाएं तो हम हंसते हुए जाएं। जैसे तुलसीदास जी के विषय में कहा गया है कि जब तुलसीदास जी वो पैदा हुए तो सबसे पहला पैदा होते ही उसी क्षण उनके मुख से क्या ध्वनि निकली? राम, प्रभु श्री रामचंद्र जी, इनका नाम उच्चारण किया। तो इसीलिए तुलसीदास जी का बचपन का नाम था राम बोला, उनका बचपन को उनको नाम दे दिया था, क्योंकि पैदा होते ही इस व्यक्ति ने राम बोला तो इसका नाम हो गया राम बोला। और आगे चलकर जब वो बहुत बड़े संत बने तब उनको नाम दिया गया, उनके गुरु ने दिया तुलसीदास। जैसे चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जब वो पैदा हुए तो हरि 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 कहते हुए, और वो केवल नहीं कह रहे थे, सभी लोग हरि हरि कह रहे थे जब चैतन्य महाप्रभु पैदा हुए। हम लोग पैदा होते तो हाय हाय कहते परंतु यहां पर देखिए ये महानुभाव, जब भगवान वो प्रकट होते हैं तो किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। एक बहुत सुंदर कथा है इनके नाम के विषय में, प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम ये उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो एक कथा है महाराज गुहक की रामायण में, कि महाराज गुहक थे और गलती से इनके हाथ से एक ब्राह्मण की हत्या हो गई थी, तो ब्रह्म हत्या का पाप अब लग गया इन्हें। तो ये सभी से पूछ रहे थे, अपने मंत्रीगण से पूछ रहे थे कि क्या इसका उपाय है, कैसे इस श्राप से मैं बाहर निकलूं ब्रह्म हत्या के पाप से। तो उन्होंने कहा भाई एक ही उपाय है, इस शरीर को त्यागना होगा, आत्महत्या करनी होगी। तो वो गए जंगल में आत्महत्या करने के लिए, और जंगल में उन्होंने एक आश्रम देखा, तो आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया और वहां पर एक ऋषि पुत्र था, छोटा सा ऋषि पुत्र। तो उस ऋषि पुत्र को सब कुछ कहा महाराज गुहक ने कि ऐसे ऐसे मेरे हाथ से ब्रह्म हत्या हो गई, तो इसका कोई उपाय है, आप ऋषि पुत्र हैं। तो ऋषि पुत्र कहता है कि बहुत सरल उपाय है, यदि इस पाप से मुक्त होना है तो 3 बार राम 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 इनका नाम उच्चारण करो 3 बार, और जो भी ये पाप हुआ है, एक नहीं कितने भी ब्रह्म हत्याएं हुई हो, सभी से मुक्त हो जाओगे। तो ये इतना सरल उपाय, यहां पे तो मैं आत्महत्या करने जा रहा था और पता नहीं कैसे मैं करता आत्महत्या यहां पर, और यहां पर उपाय दिया है केवल 3 बार ये राम नाम का उच्चारण करना है। तो उन्होंने कहा मैं 3 क्या, 4 बार करता हूं, एक एक्स्ट्रा। और जैसे ही उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया तो तुरंत उनके अंदर वो जो पाप के लक्षण, ब्रह्म हत्या के पाप के लक्षण थे, वो सारे लक्षण चले गए और प्रसन्न चित्त हो गए वो रामचंद्र जी का नाम लेते। तो इतने वो प्रसन्न हो, उन्होंने ऋषि पुत्र को दंडवत किया और करते हुए फिर से अपने राज्य में जा रहे थे। आश्रम से जैसे ही कुटिया से बाहर निकले तो ये जो ऋषि पुत्र के पिता थे वो स्नान कर नदी से आ रहे थे। तो उन्होंने महाराज गुहक को देखा, इतने प्रसन्न चित्त नाचते कूदते वो बाहर निकल रहे हैं। तो इन्होंने पूछा भाई कौन है आप और ये मेरे आश्रम से आप बाहर आ रहे हैं और इतने प्रसन्न क्यों दिख रहे हैं? तो सब कुछ बताया उन्होंने कि वो ये आपका आश्रम है, वो छोटा सा बालक वहां पर, हाँ वो मेरा पुत्र है। अरे वो बहुत जादुई व्यक्ति है, वो उसने मुझे ये 3 बार राम का नाम कहने कहा और मेरा सारा जो पाप है वो दूर हो गया और मैं अब इतना हल्का महसूस कर रहा हूं, मैं उनके नाम का भाव विभोर से मैं उच्चारण कर रहा हूं। तो पूछते हैं कि मेरे पुत्र ने कहा किसका नाम उच्चारण करने के लिए? वो कहा राम का नाम, 3 बार बोला, 3 बार उच्चारण करो सारे पाप मुक्त हो जाओगे सारे पापों से। तो ये बहुत क्रोधित हुए, ये कहे चलो मेरे साथ अंदर। तो उन्हें ले गए अंदर और इतनी जोर से अपने पुत्र को डांटा फटकारा, अभी तुरंत निकल जाओ इस घर से, इस आश्रम से। तो ये महाराज गुह का बोले कि भाई मेरे वजह से इसको इतना दंड मिल रहा है, पता नहीं मुझे क्या मिलेगा। तो पूछते क्यों भाई, क्यों दंडित करो, इतना अच्छा कार्य इसने किया। तो उनके पिता कहते हैं कि इसे मैंने इतना सिखाया, इतने वर्षों से इसे मैंने अपने आश्रम में रखा है, इतना सिखाया है, और इतना सिखाने के बाद भी इसे पता नहीं कि चाहे कितना भी बड़ा पाप हो, राम का नाम केवल 1 बार लेने से मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। और ये मूर्ख, ये बालक कहता है कि 3 बार लेना होगा। यदि मैं होता यहां पर तो मैं कहता केवल 1 बार, बोलने की भी जरूरत नहीं, यदि तुम केवल सुन भी लेते तो तुम्हारे सारे पाप मुक्त हो जाते थे। तो ये है प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम की महिमा। जैसे एक और कथा है कि कुछ निषाद थे और ये निषाद एक प्रकार के डकैत थे। ये तो इनका एक सरदार था डकैतों का, निषादों का। तो योजना बनाई कि हम वन में जाएंगे और वन में बहुत से ऐसे व्यापारी आते हैं जो वन से गुजरते हैं, और वन से गुजरते हुए अपने सारे धन वो वहां से लेकर जाते हैं। तो उन्होंने योजना बनाई कि वन में जाएंगे और वहां पर जाकर ये व्यापारियों का धन हम चोरी करेंगे और कैसे वहां पर वन में इस धन का भोग करेंगे हम। तो ये जो निषाद का राजा है, सरदार है, ये अपने पूरे गुट को संस्कृत में कहता है कि कैसे हम चोरी करेंगे। ये देखिए प्रभु रामचंद्र जी के नाम की महिमा। तो ये कहता है बाकी डकैतों को, वने चरामो, कि वन में जाएंगे रमण करेंगे, वने चरामो वसुच हरामो, कि ये जो भी व्यापारी वहां पर अपनी धन राशि लेकर आए हैं उनका हरण हम करेंगे, वसुच हरामो। और फिर क्योंकि हम चोरी करने से थक जाएंगे, नदी स्तरामो, नदी में तैरेंगे वो थकान को दूर करने के लिए, न भयम स्मरामो, और बिल्कुल भय मत रखना, केवल यही बात का स्मरण करते रहना। तो ये जो संस्कृत में उसने कहा, हर एक वाक्य के पीछे किसका नाम था? वने चरामो वसुच हरामो नदी स्तरामो न भयम स्मरामो। केवल इतनी बार उसने राम का उच्चारण कर दिया, हालांकि वो रामो कह रहा था, तुरंत वैकुंठ विमान आया और वो सारे डकैतों को लेकर वैकुंठ में ले गए। तो असली धन उन्हें ये प्राप्त हुआ जो वो केवल इस संसार का धन चुराने ले जा रहे थे, परंतु केवल एक एक वाक्य में रामो 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 कहते हुए। जैसे हमारे एक बंबई के ब्रह्मचारी, वो एक बार महाराष्ट्र के जेलों में प्रचार करने के लिए जा रहे थे। तो यरवड़ा जेल है, पुणे के निकट है, तो वहां पर बड़ा जेल है यरवड़ा जेल। तो वहां पर उनका प्रोग्राम आयोजित किया था कैदियों के लिए। तो एक बहुत अच्छा गुण ये जेल प्रोग्राम में पाया जाता है कि कोई व्यक्ति वहां से जा नहीं सकता, अटेंडेंस पक्का रहेगा, कोई उठ के कहीं पर जा नहीं सकता। तो उनका प्रोग्राम था और 500 कैदी वहां पर बैठे हुए थे उनके प्रवचन के लिए, और उन सबको आजीवन कैद दिया गया था, लाइफ इंप्रिजनमेंट। सारे 500 आजीवन कैदी जो बाहर नहीं निकलने वाले थे, वहीं पर सब कुछ होने वाला था उनका, वो प्रवचन सुन रहे थे। तो प्रवचन हुआ, प्रवचन के पश्चात उन्होंने पूछा किसी का कोई प्रश्न है, तो एक कैदी हाथ उठाता है, कहता है कि मेरा प्रश्न है और मैं मंच पर आकर माइक पर पूछना चाहता हूं प्रश्न। तो थोड़ा डर गया भाई, एक एक का हिस्ट्री बहुत खूंखार हिस्ट्री रहा होगा इन सब व्यक्तियों का, और ये आके कहता है कि मैं मंच पर आकर प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो इन्होंने वो डीसीपी से पूछा, ये मंच पर आकर माइक पर पूछना चाहता, बोला हाँ आने दो, कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं यहां पर। तो ये मंच पर आता है, माइक लेता है और सभी कैदियों को देखते हुए पूछता है, मेरा प्रश्न है कि आप जब ये कीर्तन कर रहे थे इस महामंत्र का, तो आप कीर्तन में राम के बजाय रामो कह रहे थे, तो राम है वो, तो राम के बजाय ये रामो क्यों कहते हैं आप? तो सभी जो बाकी कैदी थे वो ताली मारने लगे, अरे हमारे व्यक्ति में भी दम है यार, क्या प्रश्न पूछा इसने। तो माइक देकर वो फिर से चला गया नीचे। कई बार हम कीर्तन में कहते हैं हरे रामो ऐसे करते, तो आ जाता है। तो प्रवक्ता उनसे कहते हैं कि देखो, यदि मैं आपके सामने रत्नागिरी आम लाकर दूं और कहूं ये है आमो, तो यदि मैं आम को आमो कहूंगा तो क्या आप नहीं खाएंगे उसे? क्या आम को आमो कहने से वो बदल जाता है कुछ? तो उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति जैसे ये जो डकैत थे, ये राम को रामो कह रहे थे, केवल राम को रामो कहा, उसी से ही वैकुंठ विमान आकर इन्हें ले गया, तो फिर कोई व्यक्ति यदि ठीक प्रकार से भक्ति भाव से प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेगा तो क्यों नहीं उसका उद्धार होगा। और ये डकैत और ये सब तो दूर की बात है, एक सुंदर कथा है रावण की कि जब प्रभु रामचंद्र जी सेतु बांध रहे थे और अब रावण को यह सूचना मिल रही थी, वहां तक ईमेल एसएमएस गया था लंका तक कि यहां पर यह सेतु किस प्रकार से बांधा जा रहा है कि पत्थर को तैराया जा रहा है, और आज भी यदि आप उधर रामेश्वरम जाओ तो वैसे पत्थर हैं, आज भी हैं वैसे पत्थर जो तैरते हैं, हमने देखा है। तो ये पत्थर तैर रहे हैं, तो सबसे पहले आश्चर्य तो रामचंद्र जी को हो रहा था, रावण को तो बाद में हुआ, रामचंद्र जी आश्चर्य कर रहे थे कि ये उन्होंने देखा ये हनुमान जी और सारे वानर पत्थर ला ला कर फेंक रहे हैं और पत्थर तैर रहे हैं और सेतु बन रहा है। तो वह आकर देखे, भाई ये कैसे हो रहा है? तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एक पत्थर उठाया और उनको थोड़ा संशय हो रहा था कि पता नहीं ये लोग क्या जादू कर रहे हैं कि पत्थर तैर रहा है, तो थोड़ा कोने में गए, थोड़ा अकेले कोने में गए और धीरे से फेंका, देखते हैं ये तैरता है क्या। तो जब प्रभु रामचंद्र जी ने पत्थर फेंका तो क्या हुआ, डूब गया, डूब गया। तो पत्थर डूब गया, तो हनुमान जी पीछे से देख रहे थे, हंसने लगे, तो उनको पता नहीं, अभी सारे कैमरा भी वहां पर देख रहे हैं उनको, तो प्रभु रामचंद्र जी पूछे, ये बताओ ये कैसे तैरा रहे हो पत्थर को? तो उन्होंने कहा कि भाई इसका रहस्य है, आपका नाम इसके ऊपर लिखा है, क्योंकि आपका नाम लिखा है पत्थर के ऊपर तो वो नाम जो है वो तैरा रहा है, इसलिए आपका नाम आपसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो आप थोड़ा साइड में हो जाओ, हमको ये ब्रिज बनाने दो। तो ये समाचार लंका तक पहुंच रहा था, रावण को मंदोदरी कहती है कि भाई सुन रहे हो, सुन रहे हो पेपरों में क्या खबर छपी है कि वहां पर पत्थर तैराए जा रहे हैं, सेतु बनाया जा रहा है तुमको मारने के लिए यहां पर, तो क्या करोगे? जब उनके अंदर इतनी शक्ति है कि पत्थरों को तैरा रहे हैं, तो समझ लो अभी भी समय है, सीता को लौटा दो। हालांकि बहुत से लोगों ने रावण को समझाया था, रावण अव्वल नंबर का राक्षस था, तो रावण कहता है क्या क्या कहा, पत्थरों को तैरा रहे हैं, अरे मेरी शक्ति नहीं जानती तुम, क्या मैं पत्थरों को नहीं तैरा सकता? तो मंदोदरी कहती है पत्थरों को और तुम तैराओगे? तो रावण ने कहा हां चलो। तो मंदोदरी को अकेले रावण ले गया समुद्र के तट पर, लंका के समुद्र के तट पर, और एक पत्थर लिया और रावण ने उस पत्थर को सबसे पहले अपने माथे को लगाया और आंख बंद कर कुछ वो बोल रहा था अपने ही मन ही मन। मंदोदरी सुनने का प्रयास कर रही थी क्या बोल रहा है, परंतु थोड़ा धीरे बोल रहा था रावण, एक ही सर था उस समय। और फिर रावण ने कुछ ऐसे मंत्रोच्चारण करते हुए उस पत्थर को समुद्र में फेंका। जैसे ही रावण ने उस पत्थर को समुद्र में फेंका तो क्या हुआ, हाँ तैरने लगा। आप लोग थे उधर, पत्थर तैरने लगा, सही में तैरने लगा, और मंदोदरी देखी ये पत्थर तैर रहा है, ये रावण में अचानक क्या इस प्रकार की शक्तियां आ गई कि पत्थर को ये भी तैरा रहा है। तो मंदोदरी क्या कहे, रावण ने देखा तैर रहा है, जाके चेक कर लो, पत्थर ही है वो तैर रहा है। तो मंदोदरी ने जाके चेक किया, पत्थर ही था, तैर रहा था। तो रावण ने कहा चलो चलो भाई, कहती है कि मेरे में दम नहीं है, कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मंदोदरी अब एक हफ्ता बीता, दो हफ्ता बीता, वो सोच रही है। तो दो हफ्ते बाद वो रावण को पूछती है, वो तो सब ठीक है लेकिन वो पत्थर को कैसे तैराया वो बताओ मुझे। तो रावण हंसने लगा, अभी तक गया नहीं तुम्हारे मन से वो, दो हफ्ते बाद भी अभी भी वही चिंता कर रही हो। तो रावण ने फिर एकांत में ले जाकर मंदोदरी से कहा, रावण कहता है कि जब याद है मैं वो पत्थर लिया था तो उसको मैंने अपने माथे पर लगाया था। बता हां वही तो मैं पूछना चाहती हूं कि वो माथे पर लगाकर क्या तुम बड़बड़ कर रहे थे। तो रावण कहता है बोलना मत किसी को, उस पत्थर को मैंने अपने माथे पर लगाया और मैं कह रहा था राम की कसम यदि तू तैरा नहीं तो। तो उसे राम की कसम दी थी इसलिए वो पत्थर तैरने लगा। तो ये है प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम की महिमा। इसीलिए यदि हमें वास्तविक रूप में रामनवमी मनानी है तो रामनवमी हमें मनानी चाहिए उनके नाम का गुणगान करते हुए। और वो इस कलयुग में अपने नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। जैसे कि एक बार एक पिता और पुत्र वो खड़े थे और उन्होंने वो जो पुत्र था उसने देखा एक शव यात्रा जा रही थी। शव यात्रा एक शव को वो क्या कहते हैं उसके ऊपर तिरड़ी के ऊपर सुलाया गया और ले जा रहे थे जलाने के लिए। तो पुत्र ने देखा कि ये क्या हो रहा है, ये व्यक्ति सोया हुआ है, इसको चार लोग उठाकर ले जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, राम नाम सत्य है। तो पुत्र पिता से पूछता है, पिताजी क्या हो रहा है। पिताजी कहते हैं वो शव यात्रा जा रही है। क्या होती है शव यात्रा? तो पिताजी ने कहा कि ऐसे ऐसे व्यक्ति मर चुका है, उसे ले जा रहे हैं जलाने के लिए। बोले ये क्या बोल क्या रहे हैं ये लोग। तो पिताजी कहते हैं राम का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। तो पुत्र पूछता है, सभी ले रहे हैं मैं देख रहा हूं, वो ऊपर लेटा हुआ वो नहीं ले रहा। तो पिताजी कहते हैं वो मरा हुआ है, वो कैसे लेगा नाम का नाम। तो अब पुत्र पिताजी की तरफ देखता है, पूछता है आपके अनुसार वो नाम नहीं ले रहा राम का क्योंकि वो मरा हुआ है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो नाम राम का नाम नहीं ले रहे हैं वो भी मरे हुए हैं। वो पिताजी देखते हैं, क्योंकि पिताजी भी नहीं ले रहा था। तो पिताजी उसका हाथ पकड़ता है, चलो हम भी थोड़ा वहां जाते हैं और पीछे खड़े होके पुत्र के साथ राम नाम सत्य है उसने भी शुरू कर दिया, क्योंकि पुत्र ने शिक्षा दी पिताजी को कि जिसके मुख पर प्रभु राम का नाम नहीं है वो एक शव यात्रा में ही है और शव यात्रा में शव है। तो शव यात्रा में शव बनने से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, इस जिह्वा से बोलो सियावर रामचंद्र की, उनका नाम उच्चारण कर लेना चाहिए। नहीं तो जब तिरड़ी पर लेटे रहेंगे, हमें ले जा रहे होंगे लोग, उस समय बहुत देरी हो जाएगी। उस समय केवल दूसरे ही राम का नाम लेंगे और वही उनका ही उद्धार होगा। तो वो अंत समय आने से पहले हमें उनका नाम अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। और विशेष रूप से जो इस प्रकार के उत्सव होते हैं, जो आज का है रामनवमी का उत्सव, ये जो भगवान के आविर्भाव दिवस होते हैं, इसमें वो सबसे ज्यादा कृपालु होते हैं। भये प्रकट कृपाला दीन दयाला, हम सब दीन दुखियारे हैं और वो हैं हमारे दीनानाथ दीन बंधु। और इस कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, ये कलयुग जो है ये केवल नाम आधारा है और यही एकमात्र आधार है हमारे उद्धार का। और यदि हमें भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न करना है तो एकमात्र उपाय है कि उनके सामने उनके समक्ष जाकर हमें, जैसे हनुमान जी हर समय प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम जप में मग्न रहते हैं, उस प्रकार से हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी की रामनवमी मनानी चाहिए। केवल आज ही के दिन नहीं बल्कि हर दिन, और हर दिन नहीं बल्कि हर क्षण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामनवमी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदी, हरे कृष्णा।